उस रात वॉल्क थिएटर दर्शकों से खचाखच भरा था। नाटक था द शॉग्रॉन। मुख्य भूमिका में डायन बूसिको, प्रेमी युगल हैरी मॉन्टेग्यू और एडा डायस। उम्दा अंग्रेज मंडली की लोकप्रियता शिखर पर थी। हॉल हमेशा भरा रहता, गैलरी जोश से दाद देती, कुर्सियों और बॉक्सों में लोग घिसे पिटे जज्बातों पर मुस्कुराते, पर मजा गैलरी जितना ही लेते। एक दृश्य था जो सारे थिएटर को बांध लेता था, वो क्षण जब हैरी मॉन्टेग्यू एडा डायस से उदास लगभग शब्दहीन विदा के बाद अलविदा कहकर जाने को होता है। आतिशदान के पास खड़ी आग की ओर झुकी नजरों वाली अभिनेत्री ने फैशन से बेपरवाह सादी सलेटी कश्मीरी पोशाक पहनी थी, जो उसके लंबे कद के साथ बहती हुई पैरों तक एक लंबी रेखा बनाती थी। गले में काले मखमल का पतला फीता बंधा था, जिसके सिरे पीठ पर झूलते थे। जब उसका प्रेमी जाने को मुड़ता, वो दोनों बाहें आतिशदान की ताक पर टिकाकर चेहरा हथेलियों में छिपा लेती। वो दहलीज पर ठिटक कर उसे देखता, फिर चुपचाप लौटकर मखमली फीते का एक सिरा उठाकर चूमता और कमरे से निकल जाता, बिना उसके जाने, बिना उसकी मुद्रा बदले। इसी मौन विदा पर पर्दा गिरता था। न्यूलैंड आर्चर द शॉग्रॉन इसी दृश्य के लिए देखने जाता था। मॉन्टेग्यू और एडा डायस का संयमित भाव, उनका अनकहा दुख उसे पेरिस में क्रुआजेट और ब्रेसान, लंदन में मैज रॉबर्टसन और कैंडल के सर्वश्रेष्ठ अभिनय जितना बड़ा लगता था। वो थमी हुई अभिव्यक्ति उसे मशहूर से मशहूर नाटकी उफान से ज्यादा छूती थी। उस रात ये छोटा दृश्य और भी मार्मिक हो उठा, क्योंकि क्यों ये वो नहीं कह सकता था, वो उसे करीब 10 दिन पहले काउंटेस ओलेंस्का से हुई गोपनीय बातचीत के बाद की विदा याद दिला रहा था। दोनों स्थितियों में समानता खोजना कठिन था और चेहरों में भी कोई मेल न था। न्यूलैंड आर्चर उस युवा अंग्रेज अभिनेता के रूमानी रूप से कोसों दूर था। एडा डायस लंबी लाल बालों वाली स्त्री थी और उसका पीला अनोखा मगर सुंदर न कहा जाने वाला चेहरा एलेन ओलेंस्का के जीवंत चेहरे से बिल्कुल अलग था। आर्चर और काउंटेस दिल तोड़ते मौन में बिछड़ते प्रेमी भी न थे, वे वकील और मुवक्किल थे जो एक ऐसी बातचीत के बाद विदा हुए थे। जिसने वकील पर मुकदमे की सबसे बुरी छाप छोड़ी थी, तो फिर वो समानता कहाँ थी जो युवा आर्चर का दिल धड़का रही थी। वो काउंटेस ओलेंस्का की उस रहस्यमय देन में थी, रोजमर्रा के अनुभव से परे त्रासद और मर्मस्पर्शी संभावनाओं का आभास करा देना। ये छाप छोड़ने लायक उसने शायद ही कुछ कहा था। ये उसके रहस्यमय परदेसी अतीत की परछाई थी, या उसके अपने भीतर बसे किसी नाटकीय आवेगमय तत्व का अंश। आर्चर हमेशा मानता आया था कि लोगों की नियति में संयोग और परिस्थिति से ज्यादा वे घटनाएं तय करती हैं, जिन्हें हर कोई अपनी प्रकृति से खींचता है, और शुरू से उसे लगा था कि एलेन ओलेंस्का ऐसी घटनाएं खींचने वालों में है। वो शांत लगभग निष्क्रिय युवती उसे ऐसी लगती थी जिस पर चीजें टूट कर आनी ही हैं, चाहे वो कितना बचे कितना दूर हटे। अनोखी बात ये थी कि वो इतने नाटकीय माहौल में जी थी कि नाटक जगा देने की अपनी ही प्रवृत्ति शायद उसकी नजर से ओझल रह गई थी। उसका न चौंकना ही बता देता था कि उसे किस भंवर से निकाला गया है। जो कुछ वो सहज मानती थी वही उसका पैमाना था जिसके खिलाफ वो लड़ी थी। आर्चर अंततः इस निश्चय पर पहुंच चुका था कि काउंट ओलेंस्की के आरोप निराधार नहीं। काउंटेस के अतीत का वो रहस्यमय सचिव भागने में मदद के बदले बिना इनाम रहा हो, ये मुश्किल था, और उस भागने की परिस्थितियां भयानक थीं, लगभग अविश्वसनीय। वो जवान थी, डरी हुई, बेसहारा, तो अपने रक्षक के प्रति कृतज्ञ होना क्या स्वाभाविक न था। दुख की बात बस ये थी कि कानून और दुनिया की नजर में यही कृतज्ञता उसे उस घिनौने पति के बराबर खड़ा कर देती थी। आर्चर ने अपने कर्तव्य के नाते उसे ये समझाया था और उसने स्वीकार किया था। ये भी दिखाना पड़ा था कि उसकी उम्मीदों वाला उदार न्यूयॉर्क ही वो जगह है जहां से उसे सबसे कम रियायत मिल सकती है। ये समझाना और उसका इस्तीफा भरा स्वीकार देखना आर्चर के लिए यातना थी। उस मौन स्वीकारोक्ति से उसने जाना कि काउंटेस उसमें एक गुप्त ईर्ष्या और गुप्त करुणा जगाती है, मानो चुपचाप कबूल की गई भूल ने उसे उसके रहम पर छोड़ दिया हो, नीचा भी किया हो और साथ ही और भी स्नेह के योग्य बना दिया हो। उसे तसल्ली थी कि उसने अपना राज लेटर ब्लेयर की ठंडी नजर या परिवार की झेपी आंखों के बजाय उसी को सौंपा। जल्द ही वो सबको भरोसा दिला सका कि काउंटेस ने तलाक की व्यर्थता समझकर इरादा छोड़ दिया है। और सबने राहत की सांस लेकर उस अप्रियता से आंखें फेर ली जो उसने उन्हें बचा दी थी। मुझे पता था न्यूलैंड कर दिखाएगा, श्रीमती वेलैंड ने गर्व से कहा, और चुपके से बुलाने वाली बूढ़ी मिंगट ने उसे सराहा और अधीर होकर जोड़ा, नादान लड़की, मैंने खुद कहा था, बेवकूफी है, ब्याहता और काउंटेस की किस्मत पाकर एलेन मिंगट बूढ़ी कुवारी दिखना चाहती है। इन सब बातों ने न्यूलैंड के मन में काउंटेस से हुई आखिरी बातचीत सजीव कर दी। जब दोनों अभिनेताओं की विदा पर पर्दा गिरा, उसकी आंखें नम थीं और वो थिएटर से निकलने को उठा। उठते हुए वो पीछे की ओर मुड़ा और जिस स्त्री के बारे में सोच रहा था उसे बोफट दंपति, लॉरेंस लेफर्ट्स और एक दो अन्य पुरुषों के साथ एक बॉक्स में बैठा पाया। उस रात के बाद से उसने उससे अकेले में बात नहीं की थी और मिलने से बचता रहा था, पर अब निगाहें मिल गईं और चूंकि श्रीमती बोफट ने भी उसे पहचान कर अपना जाना पहचाना अलसाया निमंत्रण संकेत किया, बॉक्स तक जाए बिना चारा न था। बोफट और लेफर्ट्स ने जगह बनाई और कम बोलकर सुंदर दिखना पसंद करने वाली श्रीमती बोफट से दो चार बातें करके आर्चर काउंटेस के पीछे बैठ गया। बॉक्स में केवल सिलर्टन जैक्सन और थे जो धीमे राजदार स्वर में श्रीमती बोफट को पिछले रविवार श्रीमती लेम्यूल स्ट्रदर्स के यहाँ हुए स्वागत समारोह का हाल सुना रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि वहाँ नाच भी हुआ। श्रीमती बोफट अपनी निर्दोष मुस्कान के साथ सुन रही थी, सिर ठीक उस कोण पर झुकाए कि नीचे की कुर्सियों से उनकी पार्श्व रेखा दिखे, और इसी क्षण का लाभ उठाकर काउंटेस मुड़ी और धीमे से बोली, आपको क्या लगता है, उसने मंच की ओर कनखी से देखते हुए पूछा, कल सुबह वो उसे पीले गुलाबों का गुच्छा भेजेगा? आर्चर का चेहरा तप गया, दिल अचरज से उछल पड़ा। वो काउंटेस से केवल दो बार मिलने गया था और दोनों बार उसे पीले गुलाबों का डिब्बा भेजा था, दोनों बार बिना कार्ड। उसने फूलों का कभी जिक्र नहीं किया था और आर्चर समझता था कि वो नहीं जानती कि भेजने वाला कौन है। अब उसका अचानक उस उपहार को पहचानना और उसे मंच की उस कोमल विदा से जोड़ देना उसे उलझी हुई खुशी से भर गया। मैं भी यही सोच रहा था, मैं भी वो दृश्य मन में लिए थिएटर से निकलने वाला था। अचरज की उसका चेहरा जैसे अनिच्छा से गहरे सुर्ख रंग में दहक उठा। उसने दस्ताने पहने हाथों में थमे सीप के ओपेरा ग्लास पर नजरें झुकाईं और थोड़ी देर रुककर पूछा, मे के न रहते आप क्या करते हैं? काम में लगा रहता हूँ, आर्चर ने सवाल से कुछ खिन्न होकर उत्तर दिया। पुराने चलन के अनुसार वेलैंड परिवार पिछले हफ्ते सेंट ऑगस्टीन चला गया था, जहां मिस्टर वेलैंड की सांस की नलियों का ख्याल करके हर साल जाड़े का दूसरा आधा बिताया जाता था। मिस्टर वेलैंड सौम्य कम बोलने वाले आदमी थे, राय कोई नहीं पर आदतें ढेरों, और उन आदतों में कोई दखल नहीं दे सकता था। एक आदत ये थी कि दक्षिण की सालाना यात्रा में पत्नी और बेटी साथ चले ही, घर की एकता बनाए रखना उनके मन की शांति के लिए अनिवार्य थी। श्रीमती वेलैंड न होती तो उन्हें पता न चलता कि उनके ब्रश कहाँ हैं या चिट्ठियों के लिए टिकट कैसे आते हैं। परिवार में सब एक दूसरे को चाहते थे और मिस्टर वेलैंड इस श्रद्धा के केंद्र थे, इसलिए पत्नी और मे ने उन्हें अकेले सेंट ऑगस्टीन भेजने की बात कभी सोची तक न थी, और वकालत करने वाले दोनों बेटे जाड़ों में न्यूयॉर्क नहीं छोड़ सकते थे, वे ईस्टर पर जा मिलते और सब साथ लौटते। मे का पिता के साथ जाना जरूरी है या नहीं, इस पर बहस आर्चर के लिए असंभव थी। मिंगट परिवार के डॉक्टर की साख बहुत कुछ उसी निमोनिया के दौरे पर टिकी थी जो मिस्टर वेलैंड को कभी पड़ा ही नहीं, इसलिए सेंट ऑगस्टीन जाने की उनकी जिद अडिग थी। पहले तय था कि मे की सगाई की घोषणा फ्लोरिडा से लौटने पर होगी, और घोषणा पहले हो जाने से मिस्टर वेलैंड की योजनाएं बदलने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। आर्चर का मन था कि यात्रियों के साथ जाए और मंगेतर संग धूप और नौका विहार के कुछ हफ्ते बिताए, पर वो भी रिवाजों और रूढ़ियों से बंधा था। उसके पेशेवर कर्तव्य चाहे कितने हल्के हों, भरे जाड़े में छुट्टी मांगता तो पूरा मिंगट खानदान उसे छिछोरा ठहराता। उसने मे की रवानगी को भाग्य मानकर स्वीकार किया, ये समझते हुए कि उसे धैर्य सीखना है जो वैवाहिक जीवन के मूल तत्वों में से एक है। उसे भान हुआ कि काउंटेस झुकी पलकों के नीचे से उसे देख रही है। मैंने वही किया जो आप चाहते थे, जो आपने सलाह दी, वो अचानक बोली। अच्छा, मुझे खुशी है, उसने उत्तर दिया।
ऐसे क्षण में ये बात छेड़ने से असहज, मैं समझती हूँ कि आप सही थे, वो कुछ हाँफती सी बोलती गई, पर कभी कभी जिंदगी कठिन होती है, उलझी हुई, जानता हूँ, और मैं कहना चाहती थी कि मुझे लगता है आप सही थे, और मैं आभारी हूँ। उसी क्षण बॉक्स का दरवाजा खुला और बोफर्ट की गूंजती आवाज ने बात काट दी। काउंटेस ने झट ओपेरा ग्लास आंखों तक उठाकर वाक्य समेट लिया। आर्चर उठा और बॉक्स तथा थिएटर छोड़ गया।
ठीक एक दिन पहले उसे मैं वैलेंट की चिट्ठी मिली थी, जिसमें उसने अपनी चिर परिचित साफ गोई से उनके पीछे एलन के साथ अच्छे रहने की विनती की थी। वह आपको पसंद करती है, बहुत मान करती है, और ऊपर से न दिखे तो भी वो अब भी अकेली और दुखी है। मुझे लगता है दादी और लवेल मिंगट मामा दोनों उसे नहीं समझते। वे समझते हैं कि वो जितनी है उससे ज्यादा दुनियादार और महफिल पसंद है, पर सच ऐसा नहीं। मैं ये भी खूब समझती हूँ कि न्यूयॉर्क उसे कितना नीरस लगता होगा, पर परिवार ये कभी नहीं मानेगा। वो उन चीजों की आदि रही होगी जो हमारे पास नहीं, बढ़िया संगीत, प्रदर्शनियाँ, नामी लोग, कलाकार, लेखक, वही समझदार लोग जिनकी आप कद्र करते हैं। दादी समझती है कि उसे बस शानदार दावतें और सुंदर पोशाकें चाहिए, पर मुझे लगता है कि न्यूयॉर्क में आप ही अकेले हैं जिनसे वो अपनी सच्ची दिलचस्पी की बातें कर सकती है।
समझदार में इस चिट्ठी के लिए उसने उसे कितना चाहा, पर उस पर अमल करने का इरादा उसका नहीं था। वो बहुत व्यस्त था और सगाई शुदा आदमी होकर काउंटेस के पैरोकार की भूमिका को बहुत नुमाया नहीं करना चाहता था। उसे लगता था कि वो भोली मे की कल्पना से कहीं बेहतर अपना ख्याल रखना जानती है। उसके कदमों में बोफर्ट था, रक्षक देवदूत की तरह उस पर मंडराते वान डेर लॉयडेन थे, और बीच की दूरी पर मौका ताकते उम्मीदवार कम न थे, लॉरेंस लेफर्ट्स भी उनमें एक। फिर भी जब जब वो उसे देखता या दो चार बातें करता, महसूस होता कि मे का भोलापन लगभग पूर्व दृष्टि है। एलेन ओलेंस का अकेली थी और दुखी थी।